मन यफअल ज़ालिका, जो करेगा ये कौन सा काम करेगा। एक तो ये कहा गया कि ऊपर ये जो बातें आई है ना, जो ये करेगा, जो आयत नंबर 29 में आई, जो ये करेगा किसी ज्याती जुल्म के साथ तो अल्लाह ताला उसको आग में डालेगा। दूसरा इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो मुफस्सिर कुरान है, कि ज़ालिका, ये से मुराद तमाम अहकामात शरीयत है। ये जो इन अहकामात को तोड़ेगा, जुल्म के साथ ज्यादती करेगा, तो आग के अंदर जाएगा। चाहे वो अब पीछे विरासत के आ गए, चाहे वो ये निकाह वगैरह के आ गए, चाहे ये मुहर्रमात के आ गए बातें, जितनी भी ये बातें, इन तजतनी बोले। लेकिन अगर तुम इज्तनाब करोगे कबायर से, कबीरा गुना, कबीरा गुना कौन से हैं? अब कबीरा गुनाहों की जो फहरिस्त हमें बताई गई, उनके अंदर आप देख लें कि कैसे हमें पहचानने की कबीरा गुना कौन सा है। नंबर वन ये कि उसके ऊपर कोई हद वाजिब होती हो, वो कबीरा गुना है। यानी हद कोई लगा, जैसे चोरी की ये हद है, जिना की ये हद है। नंबर टू, जिस पर किताबो सुन्नत में वईद सुनाई गई हो, यानी इस बंदे के ऊपर लानत है, या ये हम में से नहीं है, या इसके लिए जहन्नुम है, चाहे कुरान में आया हो चाहे हदीस में आया हो। नंबर थ्री, इसकी हुरमत बयान की गई कि हराम कर दिया अल्लाह ने, जैसे आता है ना कुरान में, अल्लाह ने ये हराम कर दिया, तो वो भी कबीरा में आता है। इसी तरह उलमा कहते हैं वो सगीरा गुना भी कबीरा बन जाते हैं जिनके ऊपर इंसान हमेशगी तैयार करे, ढिटाई इख्तियार करे और उनको कहे कि कुछ नहीं होता इससे, वो भी कबीरा बन जाते हैं जिनको इंसान ढीठ होकर करता ही चला जाए। तो अगर तुम कबायर से इज्तनाब करोगे, मा तुन हाउन अनहु नुकफिर अनकुम सैयात, जिनसे तुम्हें रोका रोके जाते हैं तुम्हें, जिनसे तुम्हें अल्लाह ने रोका है, अगर तुम उनसे रुक जाओगे जो बड़े बड़े गुनाह, तो हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयां, वह नुदखिलकुम, और दाखिल करेंगे हम तुमको मुदखलन करीमा, ऐसी जगह पे जो इज्जत वाली है, यानी जन्नत में हम तुम्हें दाखिल कर देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। अब कबीरा गुनाहों के अंदर कत्ल भी आ जाता है, जीना भी आ जाती है, कौमे लूत वाला अमर भी, शराब पीना, चोरी करना, माल गसब करना, किसी का सूद खाना, यतीम का माल खाना, वालदेन की नाफरमानी एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, झूठ बांधना किसी के ऊपर, झूठी गवाही देना, रमजान में बगैर किसी वजह के रोजे ना रखना, झूठी कसम खाना, कतई रहमी करना यानी अपने रिश्तेदारों से तोड़ना, नाप तोल में खयानत करना, नमाज को वक्त से पहले पढ़ लेना, यानी ऐसे ही नमाजें बेवक्त पढ़े, बिला उजर नमाज कजा कर देना, मुसलमानों को ना हक मारना, सहाबा कराम के ऊपर बुराइयां तान करना, रिश्वत लेना, फिर जकात ना देना, नेकी का हुक्म ना देना, फिर कुरान भूल जाना, हैवान को जलाना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, अल्लाह से बेखौफ होना, फिर मुर्दार खाना, जादू करना, हालत हैज में औरत के साथ यानी दूसरी तरह से जिनसी ताल्लुक कायम करना, ये सब कबीरा गुनाह है। अच्छा, इमाम ज़हबी की एक किताब है जो कबायर उसका नाम है, उसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन हो चुकी है, अगर आपको कभी मिले तो आप वो जरूर लें, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जो कबीरा गुनाहों से बच गया, अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को भी माफ कर देगा। तो सगीरा गुनाहों के अंदर ये है कि एक नमाज से दूसरी के दरमियान भी सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, एक जुमे से दूसरे, एक ने एक जुमा पढ़ा फिर दूसरा जुमा पढ़ा तो उसके दरमियान उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, एक उम्र एक और एक हज के दरमियान के भी गुनाह माफ हो जाते हैं, एक रमजान और दूसरे रमजान, मतलब ये नहीं कि रमजान आने से ही गुनाह माफ हो जाएंगे, एक रमजान में किसी ने रोजे रखे, रमजान को पूरा यानी यूटिलाइज किया और दूसरा रमजान भी ऐसे ही किया, तो उनके दरमियान के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो सगीरा गुनाह इस तरह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, वुजू करने से भी सगीरा गुनाह झड़ते हैं, तो इस तरह अल्लाह ताला उनको माफ करता है। कबीरा जो होते हैं ना, बगैर तौबा के माफ नहीं होते, या जिसका हक आपने देना उसको हक दिए बगैर नहीं माफ होते। तो इसलिए कबीरा गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है कि इंसान इन कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे। आज हम काफी अहम मौजूआत को टच करेंगे, एक तो औरतों के हवाले से जो वेस्ट में बहुत ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम तो औरतों के ऊपर बड़ा जबर करता है और उनको मारने का कहता है, और वो उसके ऊपर हम बात देखेंगे, देखेंगे कि अगर किसी मियां बीवी के दरमियान कोई नाचाकी ऐसी हद से बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। हम देखेंगे कि जब किसी के पास हम नेमत देखें तो तब क्या करना है, और हम बहुत अहम आज ये चीज देखेंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी है, हम सब चाहते हैं ना हम पहले से बेहतर हों, चाहे आप एक दफा कुरान पढ़ चुके हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं, या दो चार दफा पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, तब भी हमारे अंदर गुंजाइश है बेहतरी की, तब भी हमें और आगे से आगे अच्छा होना है। तो जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो कहते हैं ना कि हमने खुद को चेंज करना है, कोई चेंज आनी चाहिए कुरान को पढ़ने के बाद, तो वो चेंज के लिए हम आज देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जो चेंज वो लोग नहीं कह सकते कि जो पहले भी कुरान पढ़ चुके हैं हमारे अंदर तो चेंज आ चुकी है, नहीं, फिर भी इम्प्रूवमेंट करनी है और आगे बढ़ना है। इसी तरह हम रियाकारी को देखेंगे, बुखल को देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला का निजाम अदल किया है और निजाम कानून रहमत किया है। और हम आज तयम्मुम के बारे में भी पढ़ेंगे कि तयम्मुम कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, किन हालात में होगा। फिर उसके बाद हम एंड में यहूद की कुछ बातें पढ़ेंगे कि यहूदियों को कैसे दावत भी दी गई है और कैसे उनको डराया भी गया, धमकी भी दी गई है। तो ये आज हमारे मौजूआत होंगे इंशाल्लाह ताला। पिछले सबक में जो हमने पढ़ा था बहुत अहम बातें उसमें भी हमने कवर की थी, मगर आखिर में जिस पे हमने अपने क्लास को मुकम्मल किया था वो ये थी कि हमने कबायर से बचना है। तो सगायर ये नहीं है कि उनको हमने करते चले जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सगायर भी जब ढिटाई के साथ किए चले जाए इंसान तो वो भी कबायर बन जाते हैं। तो छुट्टी नहीं मिल गई कि सगीरा करते जाओ, कोई बात नहीं, वो तो कबीरा बस ना करो, सगीरा की तो कोई खैर है। तो सबा मोबिकात आपको पता है कौन सी है? सबा मोबिकात ये आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर आप तफसीर खोलें, तफसीरों की भी जरा ज्यारत किया कीजिए, आप बड़े हो गए तो तफसीरें खोलें। सबा मोबिकात आपने अपने ग्रुप्स में बताने हैं कि क्या है, ठीक है, क्या होता है सबा मोबिकात में, नहीं ये बताऊंगी, ठीक है। तो कबायर जो है इनसे बचना है, जो फराइज हैं उनको छोड़ना, जो फर्ज हम पर कर दी गई हैं चीजें उनको छोड़ना भी गुनाहे कबीरा हो जाता है। तो फराइज को छोड़ना नहीं है, कबायर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो छोटे मोटे इधर उधर गलतियां हमसे होती रहती हैं, छोटे मोटे गुनाह होते रहते हैं सगीरा, अल्लाह अपनी रहमत से उनको माफ फरमा देगा। मगर अल्लाह ताला कहता है बी केयरफुल कबायर में ना पढ़ना। और मैंने आपको इमाम ज़हबी की किताब भी बताई थी, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरी एक बुक है इसके ऊपर, छोटी सी है, आप उसको जरूर पढ़िए, उसको लें, खरीदें, आप उसको पढ़ें, ठीक है, दूसरों को तोहफे भी दें, और ये 7 आयत बता के तोहफे में दें कि कबायर से हमें बचना है। वला ततमन्नौ, और ना तुम तमन्ना करो, मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, उसकी जो अल्लाह ने फजीलत दी तुम में से बाज को बाज पर। यानी आप इस दुनिया में देखते हैं ना, हर इंसान को दूसरे के ऊपर किसी ना किसी चीज में कोई फजीलत हासिल है। मसलन कोई स्ट्रांग बहुत है, कोई मालदार बहुत है, कोई खूबसूरत बहुत है, किसी को रिश्ते बहुत अच्छे मिले हुए हैं, रिश्तेदार उसके बहुत अच्छे हैं, किसी के अंदर नेकी बहुत है, कोई किसी के अंदर खूबी है, कोई किसी में है, कोई किसी को किसी चीज में फजीलत मिली हुई है, किसी को किसी चीज में मिली हुई है। तो ऐसे में तुम उस चीज की तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने फजीलत दी बाज को बाज के ऊपर। आप देखते हैं कि बाज को फजीलत मिली हुई है तो आप भी हसरत करके तमन्ना करने लगते हैं कि हाय इसके पास ये क्यों और मेरे पास होना चाहिए था। ये नहीं करो, इसके पीछे इसके शाने नजूल में एक बात है, वो पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको और भी ज्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए अभी ये सारे जो सुभान अल्लाह ये आयतें अभी आपके सामने जहन में होंगी कि इनका क्या क्या आज कुरान हमें सिखाता है, लेकिन आप सोचें कि चंद ही घंटों में आपको कितनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, कितनी सारी समझ आ जाएगी, कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जहन में इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इतने क्लियर कि आप किसी को बताने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हजरत उम्मे सलेमा ने एक दफा कहा, या रसूल अल्लाह, आदमी जो होते हैं वो जिहाद करते हैं, हम इस सवाब से महरूम है क्योंकि हम औरतें हैं, इस तरह मीरास में भी हमें बनिस्बत मर्दों के आधा मिलता है। इस पर यह आयत उतरी। इसी तरह एक और रिवायत आती है कि मर्दों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि जब विरासत में हमें डबल मिलता है तो हमें अजर में भी डबल मिलना चाहिए ना, नजर हमें डबल क्यों नहीं मिलता। और औरतों ने दरख्वास्त की कि जब हम जिहाद हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, हमें शहादत का सवाब भी नहीं मिल पाता, तो फिर मतलब हमारे लिए फिर क्या हुआ ना। जैसे आज भी बहुत सारी औरतें पूछती हैं ये क्या बात हुई, हम तो जुमा पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद में जाके पढ़ने का 27 गुना ज्यादा अजर है घर में पढ़ने से मर्दों के लिए, तो हमें इससे महरूम किया गया, अब हम क्या करें, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं कि हम औरत हैं और ऐसे वैसे। तो इसी तरह उस वक्त में उन लोगों ने भी पूछा था। और आज दुनिया में भी ऐसा है कि औरतों को कई जगहों पर, ये फैक्ट है कि औरतों को पे कम दी जाती है मर्दों से, मर्द वही जॉब करें तो उसकी पे ज्यादा है, औरत की पे कम है। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे समझा दिया है कि जो मकाम मर्तबा अल्लाह ताला ने किसी को दिया है ना, बाज को बाज पे कोई दर्जा दे दिया है, कोई मकाम दे दिया है, किसी को माँ बाप बना दिया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, किसी को औलाद बनाया, किसी को माँ बाप बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को उस्ताद बनाया, किसी को शागिर्द बनाया, तो ये जो है ये एक किसी को, किसी के ऊपर अगर फजीलत मिली भी है तो इसके ऊपर तुम अपने अंदर घुटन महसूस करके और इस चीज की तमन्नाएं करना या हसद करना या हिर्स करना, लालच हविस में पड़ जाना, ये नहीं, ये सही नहीं है। तुम ना ऐसी तमन्ना करो, यानी किसी को कोई भी किसी की अच्छी क्वालिटी देखकर आप हसद में मुब्तला ना हो कि इसको क्यों मिल गई, इसके पास मसलन किसी के पास औलाद है, किसी को अल्लाह ने नहीं औलाद दी भी, तो अब ये वो करने लगे कि हाय इनके पास क्यों है, इसके बच्चे अच्छे क्यों निकल गए, इसको अच्छा रिश्ता क्यों मिल गया, इसका घर अच्छा क्यों है, इसको इतनी बड़ी जॉब कैसे मिल गई, ये बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं। हालांकि हर नेमत के साथ आजमाइश है, हर नेमत के साथ, अगर कोई वालदैन है तो उनके पास अपनी आजमाइशें हैं, अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी अपनी आजमाइशें हैं, अगर कोई मर्द है तो अपनी आजमाइश है, औरत है तो उसकी अपनी आजमाइश है, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी है, घर बड़ा है तो उस तरह से आजमाइश है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम फौरन हसद करने लगते हैं, फौरन किसी को देखकर जल बुन जाते हैं। आप कई हमारे मुल्कों में लोग हैं कहते हैं आए ये बड़े खुशकिस्मत हैं, देखो ना अमेरिका में रहते हैं इनके तो मजे हैं, देखो कैसे अब जो वहां यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके अपने तरह के मसाइल हैं, अपने तरह के मसले हैं, अपनी तरह के चैलेंजेस हैं। तो किसी को देखकर आजकल तो बहुत आसान है ना कि लोग किसी को मिले नहीं भी होते तो तब भी देख के जल बुन जाते हैं, फेसबुक है ये है वो है चीजें, उनके ऊपर उनके स्टेटस पढ़ के वो किधर जा रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं, इनके तो मजे हो गए, इन्होंने तो इतना बना लिया, ये तो कामयाब हो गए, हम पीछे रह गए, हाय हाय बाय बाय करने लगते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, इससे मना किया गया है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक रिदा बाद अल कदा, अल्लाह मुझे राजी कर देना अपने फैसलों पर, राजी होने की तौफीक दे देना कि मैं तकदीर पे राजी हूं, जो फैसले तूने मेरे लिए कर दिए मैं उनको कबूल कर लूं। मत तमन्ना करो इस तरह की, मतलब तमन्ना से मतलब ये है कि यानी इंसान जेलस होके, इंसान दूसरे की चीज को देखकर अब उसको चैन नहीं आ रहा, अब अंदर एक जलन घुटन हो रही है। और बाज दफा ये हमारी खुद की क्रिएटेड भी होती है, क्योंकि बाज अपने अंदर से ही निकलती है, बाज दफा इर्द गिर्द वाले एहसास दिला दिला के, देखा फलाने के तो बच्चे किधर निकल गए, आपने क्या बनाया, क्या हो गया आपका, है आप तो बेचारे रह गए। हम बच्चों को बाज दफा इतनी मिसालें देते हैं, वो देखो तुम्हारा दोस्त, वो देखो कैसे पढ़ता है, वो देखो कैसे करता है, और तुम क्या रह गए, तुम अपनी हालत देखो। तो इस तरह कह कह के इसी तरह चौर बीवी को कहता है फलाने की बीवी देखो कैसी है, तो तुम कैसी हो, तुम बिल्कुल फोड़, तुम बिल्कुल ऐसे, अब वो क्या एक नेचुरल बात होगी, हसद पैदा होने लगेगा, एक दुश्मनी सी हो जाएगी, दिल करेगा उससे ये चीज छिन जाए, मुझे मिले ना मिले लेकिन उसकी तकलीफ के ऊपर खुशी होने लगी कि अच्छा हुआ ना इनके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ इनकी नुकसान हुआ इनके कारोबार में, अच्छा हुआ इसको ये परेशानी लगी। अब तो ये बाज दफा इर्द गिर्द वालों को भी इस तरह कंपैरिजन नहीं करने चाहिए, बाज दफा औरतें बहुओं के दरमियान कंपैरिजन करने लगती हैं और एक को कहती हैं देखो दूसरी कितनी अच्छी है, उससे उसके दिल के अंदर दूसरी के लिए हसद पैदा होगा। तो नहीं, अगर वो अच्छी है तो अल्लाह का फजल है उसके ऊपर, ये समझे ना। किसी को भी कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिली हुई है, चाहे वो माल की सूरत में, चाहे कोई खूबी है, ये उसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने उसको अता की है, अल्लाह ने वो फजल दिया। अल्लाह ने क्यों फजल दे दिया, हम इसके ऊपर सोचने बैठ जाएं और इसके ऊपर बड़े परेशान हो जाए, क्यों अल्लाह ने ऐसा किया ना? इसलिए कि अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम चलाना है, इस दुनिया में किसी को किसी के लिए आजमाइश बनाना है, किसी को नेमत दे के उसको अल्लाह ने आजमाना है। इसी तरह अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया तो एक को गरीब बनाया, अगर सारों को ही एक जैसा बना देता इस दुनिया का निजाम कैसे चलता, सब तख्तों पे बैठ जाते, काम करने वाले कौन होते। किसी को कोई चीज दी, किसी को कोई चीज नहीं दी, किसी को कमी करके दी, किसी को ज्यादा करके दे दी, इसका मतलब ये नहीं अल्लाह उससे बहुत राजी है, बहुत खुश है, इसका मतलब ये अल्लाह ने किसी को आजमाइश में डाला उसके जरिए, किसी को नहीं आजमाया। देखिए आजमाइश ही है ना, अगर अब बड़ा घर है तो आजमाइश है, बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, आजमाइश है, अल्लाह ताला उसके जरिए देखता है अभी करता क्या है। तो तुम उस तरह से करके देखो, वो कहते हैं ना इंग्लिश का मुहावरा है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, हम हमेशा दूसरे को देख के सोचते हैं बस ये बड़े अच्छे रह गए, हाय हाय हम मर गए, लुट गए, फलां हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, हाय हम तो नाकाम ही हैं। तो ऑलवेज हमारा इस तरह से होता है, कभी हम उन पे नहीं राजी होते जो हमारे पास अल्लाह ने हमें दिया, वो तो भूल ही जाता है ना, अपना हमेशा वही लगता है कि मेरे पास क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो दूसरों की लगती है कि उनकी बॉस, आपको क्या पता उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या पता उसके साथ और कौन से मसले लगे हुए, अगर अल्लाह ने उसको एक चीज में बढ़ाया हुआ तो दूसरी में अल्लाह ने हो सकता है उसकी रस्सी को खींचा हो, लेकिन हमें वो खुशकिस्मत लगते हैं और अपने आप को सोचते हैं बड़े ही हम बदकिस्मत हैं। तो अल्लाह ताला ने इसे मना किया है, ऐसे मत करो, आप नहीं जानते हो, ये अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। देखें जब हम ऐसे करते हैं तो होता क्या है, हसद, रकाबत, उससे हमारी नेकियां जल जाती हैं हसद से, अरे इसको ये मिल गया, कोई मिसाल के तौर पे कोई फोन करके आपको बताती, कोई टेक्स्ट करती है जी मेरे बेटे को फलां जगह एडमिशन मिल गया, या मुझे हमें इतनी मेरे हस्बैंड को बड़ी तरक्की मिल गई, या हमने तो अपना घर फलां जगह पे ले लिया। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या दिल ही घट गया, दिल ऐसे यानी बिल्कुल जैसे दिल बैठ गया होता है ना, उस तरह से होने लगा। समझ जाया करें कि ये अंदर हसद पैदा, कोई मानेगा नहीं कि नहीं मैं कुछ से हसद कर रही हूं, अब हर एक ने कहना नहीं जो हम तो कुछ भी नहीं करते, हम क्यों हसद करेंगे, हम तो बड़े अच्छे हैं, नहीं, अंदर हसद आता है इंसान के। इंसान जब ऐसे होता है ना कि आप किसी की चीज देखते हैं, सुनते हैं किसी की न्यूज, और साथ ही आपके दिल में ही होता है, इतनी भी नहीं है, देखो ना अगर घर ले लिया फला चीज बिल्कुल बेकार थी, वो तो ऐसे है, इसका मतलब अंदर हसद आ रहा है। और इंसान फिर परेशान रहने लगता है, फ्रस्ट्रेट होता है, दूसरे के लिए खैर ख्वाही नहीं रहती दिल के अंदर, ये सब चीजें, इतनी सारी बीमारियां उसको लग जाती है, क्योंकि उसको डिप्रेशन होने लगता है। अल्लाह ने ये मना करके ना मेरे और आपके साथ खैर ख्वाही की है, अल्लाह का हर हुक्म में हमारी खैर ख्वाही, हमारी भलाई, मत जलो भुनो, मत दूसरों की चीजें देख देख के कहो हाय क्यों उसको मिल गया, हाय कैसे, कुछ भी किसी को मिल जाए ना, ये चीज अपने अंदर से हमने निकालनी है। सोचा करें जिस वक्त आपको ऐसी परेशानी होने लगे ना, इसको क्यों मिल गया, आए किसी की चीज देख के एकदम फौरन इस आयत को याद करें, फौरन सोचे नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ ला तमन्ना, और क्या करो उसकी जगह, कहो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला बारक अल्लाहु फी, अल्लाह से उसके लिए बरकत की दुआ करो ना। बाज औरतें कहती काश हम मर्द होते, अब आप मर्द होती तो आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारियां किस किस्म की होती, आप उनको उठा सकती कि नहीं। तो इसलिए इस चीज से मना कर दिया गया, क्यों अपने आप को परेशान करते, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, बीपी हाई रहने लगता है इंसान पर, बाज दफा तो इतना हद से बढ़ जाते हैं, जादू टूनों में चले जाते हैं कि जादू करा के इनको जो है ना कि ये चीज बस इनसे दूर हो जाए, उसकी उसकी बुराई, उसके साथ कुछ हो जाए, उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अंदर अंदर ना खुशी सी होती है कि अच्छा हुआ। कितनी कभी बातें हैं ना ये, कितनी गंदी बातें हैं, इनसे हमने अपने आप को पाक करना है, ठीक है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ले रे जानी नसीबों में मकता सबू व निन्नी साई नसीबों में मकता सबू, मर्दों के लिए वो है खास बात, मर्दों और औरतों की वो लेकर आए ना क्वेश्चन के, हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए। वो कहती है, हमें हम क्यों महरूम रह गए, ना हमें शहादत मिलती ना हम जिहाद पे जाती, हमारा क्या कसूर है, हमारे पर भी कर दिया जाता हम भी नहीं चली जाती और हम भी इतने अजर पा लेती। तो अल्लाह तआला ने फरमाया जो एक हिस्सा अल्लाह ने उसके लिए रखा जो उसकी कमाई है, जो उसने कमाया वो उसके लिए जो उसने कमाया, यानी मर्द और औरत के दरमियान मुकाबले ना करो, बल्कि मर्द कोई नेकी करेगा उसको उसके मुताबिक अजर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नमाज, मिसाल के तौर पे नमाज मर्द ने पढ़ी तो चूंकि मर्द ने पढ़ी है इसलिए उसको ज्यादा अजर मिल रहा है, औरत ने भी उसी जगह पे नमाज पढ़ी, औरत ने पढ़ी है इसलिए उसको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तहज्जुद में दोनों खड़े हुए लेकिन चूंकि वो मर्द है इसलिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और ये औरत है इसको कम मिलना चाहिए, ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा नहीं है। रोजा रखा मर्द ने औरत ने दोनों का एक बराबर अजर है तो दोनों के लिए उनके अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क है ना उसके मुताबिक उनके लिए अजर। आप देखें बाज जगहों पे औरतें बहुत कमा लेती हैं, अब मिसाल के तौर पे औरत जो बच्चा पैदा करते हुए जो तकलीफ बर्दाश्त करती है उस पे उसको बहुत बड़ा अजर मिलता है, अब मर्द का है लो ये क्या बात हुई हम तो इससे महरूम हो गए। तो कई चीजें अल्लाह ने औरतों के साथ खास करी है, वो उस फील्ड के अंदर अपना कमाई करके उसके अंदर अपना अच्छा कमा सकती हैं और ज्यादा अजर पा सकती हैं। कई फील्ड है मर्दों के लिए रखे, अब जब मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ना, कस्बे हलाल कमाना, हलाल रोजी कमा के लाना, उसके अंदर उनको अजर मिल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, मजदूरी करते हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, उसके ऊपर उसको अजर मिल रहा है। औरत कहे मैंने मुझे तो ये अजर नहीं मिल रहा, मैंने भी बाहर निकलना है अब जाके कमाई करनी है और फिर मैंने भी वो अजर पाना, नहीं तुम्हें तुम्हारे लिए घर के लिए अल्लाह तआला ने जिम्मेदारियां दी, तुम उसमें अजर कमा सकती हो। ये हदीस अब आती है ना कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपने खामिद की फरमाबरदारी करती है उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब ये और आदमी का है ये क्या बात हुई, ये घर में रहती हैं इनको क्यों इस तरह की मिल रही है। अब ये पैकेज आदमियों के लिए नहीं है, वो उनके लिए अलग पैकेज ऑफर हुआ हुआ है, औरतों का पैकेज अपना है क्योंकि उनके मुताबिक है, उनका फील्ड ऑफ वर्क है उसके मुताबिक उनको पैकेज दिया गया, मर्दों का अपना फील्ड ऑफ वर्क है उनके मुताबिक पैकेज दिया गया। जब फील्ड ऑफ वर्क ही डिफरेंट है, दायरा कार ही अलग है दोनों का, तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके अजर भी रखे ना, उनके रिवॉर्ड्स उसके मुताबिक रखे। अब ये ना तमन्ना करो मर्द कहें हम औरतें क्यों नहीं बन गए, हम भी घर में रहते और ऐश करते, औरतें कहें हम मर्द क्यों नहीं बन गए। औरत को देखो बताया गया कि हज, हज को फरमाया ये औरत का जिहाद है, औरत जब हज पे जाती है वो जिहाद का भी अजर पाती है, हज का भी पाती, सुभान अल्लाह। तो ये गलत बातें ना कि देखो इस्लाम में औरतों को नहीं देखो कुछ है और आदमियों को कितना वो है, और इस तरह के प्रोपोगंडास करके औरतों को बदजन किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दोनों को अलग-अलग बनाया ना, तो उनके जो फील्ड है वो अपने फील्ड में एक्सेल करेगा उसको उसका अजर मिलेगा, जो उसने कमाई की उसके मुताबिक उस जो औरत ने जो कमाई करेगी उसके मुताबिक उसका अजर हो। तो उसको फायदा नहीं मिल रहा कि उसको मर्द होने की वजह से कोई बर्तरी मिल रही होती, फिर आप जरूर कहती कि हाँ भाई ये क्या बात हुई, इज जस्ट बिकॉज वो मर्द है इसलिए उसको मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोई कम नहीं दिया गया, आपको भी उसके मुताबिक ही दिया गया, ठीक है। वसअलुल्लाह मिन फदली, अगर किसी की चीज देखे ना आप, कोई किसी के पास कुछ है ऐसी चीज, कोई कोई फजल अल्लाह का उसके पास देखते हैं आप, तो उसमें वसअलुल्लाह अल्लाह से सवाल करो, उससे जलो भुनो नहीं कि इनको क्यों मिल गया, इन्होंने क्यों इतना बना लिया, ये क्यों कामयाब हो गए, इनके पास इतना कुछ क्यों है, तुम भी अल्लाह से सवाल कर लो ना। तो इसका मतलब है जब किसी की चीज देखें तो अगर नेगेटिव दिल के अंदर ख्यालात आ रहे हैं ना कि उन्हें इनके बच्चे भी सेट हो गए, इन्होंने इतना बना भी लिया, मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा क्या, तो उसी वक्त फौरन सोचो इसको किसने दिया, किसने दिया उसको, अल्लाह ने, अल्लाह मुझे भी तो दे सकता है, तो अल्लाह से सवाल कर लो, अल्लाह से मांग लो। इन अल्लाह कहना भी कुल्ली शाइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, किसको कितना देना है, किसको किससे महरूम रखना है, कौन कितना बोझ उठा सकता है कौन नहीं उठा सकता, किसको क्या बनाना है, किसकी किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी डालनी है, किसको किस चीज से आजमाना है, अल्लाह को सब पता है, ठीक। आप क्या सीख लिया इससे? अब इतनी सारी चीजें सीखने की आती है ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक डायरी में एक जगह अलग से ये बातें लिखने की, क्या मैंने करना है, अपने एम्स लिखे ना, जो चेंज लानी है ना अपने अंदर, कुरान पढ़ने के बाद जब चेंज आनी है तो फिर वो तो बातें ही भूलती जा रही है, करना क्या है और क्या चीज नहीं करनी, तो उसमें लिख लें वला तमन्ना वाली आयत का थोड़ा सा शुरू का पार्ट लिखें, आयत नंबर लिखें 32 सूरत निसा, इसके बाद से मैंने किसी चीज को देख के हसद करना ही नहीं, हसरतें नहीं करनी, और दिल में आहें नहीं, आहें भरते हुए आंसू निकल आते हैं, हाय क्यों ऐसा हो गया, इसको क्यों मिल गया, इनके बच्चे क्यों अच्छे निकल आए, इनके क्यों ऐसी ये इसको सोच सोच के डिप्रेस मैंने नहीं होना, ठीक है। अच्छा अब आयत नंबर 33 देखते हैं, वाले कुल्लिन जहलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, वास्ते हर एक के हमने बना बना दिए वारिस उसमें से जो छोड़ा वालदेन ने और रिश्तेदारों ने, जो कुछ भी रिश्तेदार छोड़ते हैं या वालदेन छोड़ते हैं उनमें अल्लाह ताला ने वारिस बना दिया। मैंने आपको बताया मवाली क्या होता है, दोस्त भी होता है, आजाद करता गुलाम भी होता है, चचा आजाद भी होता है, वारिस है, ये सारे मतलब वली से निकला हुआ ना, तो ये सारे इसके माने हैं। यहाँ पे वारिस का माना है, यानी अल्लाह ताला ने वारिस मुकरर कर दिए हुए हैं, अल्लाह ने बता दिए हुए हैं कि कौन किसका वारिस है, वालदेन के वारिस कौन बनेंगे, रिश्तेदारों के वारिस कौन बनेंगे, ये सब किसने बता दिया। अब आपको नहीं अपने पीछे लिख के जाने की जरूरत कि मेरे फलां फलां वारिस है, इस्लाम ने बता दिए वारिस, ठीक है। वल्लदीन अकदत अईमानुकुम फआतूहुम नसीबहुम, और वो लोग जिनके गिरा बांधी तुम्हारे दाहिने हाथों ने यानी हलीफ बना लिया उनको, कसम खा के, पुराने जमाने में ऐसा होता था अरबों में कि वो कसम खा के किसी को अपना हलीफ बना लेते थे, यानी ऐसे समझ लें कि पक्का भाई बना लेते थे। अब उसके बाद तुम्हारा जीना मेरा जीना, तुम्हारा मरना मेरा मरना, यानी वो बिल्कुल कसमें खा के हम दोनों एक हैं, और जब एक मर जाएगा तो उसका जो वारिस है वो उसका ये जो जो उसका हलीफ है वो उसका वारिस भी बनेगा, यानी इतने वो पक्के आपस के अंदर, एक तो अल्लाह ने खूनी रिश्ते रखे हैं ना, एक ये वो खुद यानी हलीफ बना के हल्फ लेकर तो दूसरे को अपना ऐसे वारिस भी बना लेते थे और इतने ज्यादा उससे क्लोज हो जाते थे। तो इस चीज को फिर बाद में मंसूख कर दिया गया, ठीक है, इस हिस्से को मंसूख कर दिया गया क्योंकि अब अल्लाह ताला ने वारिस बना दिए, अब इस आयत के मुताबिक हलीफ फिर वारिस नहीं है। तो अफातुम नसीबा हम कहा गया था कि उनको उनका हिस्सा दो क्योंकि तुमने उनको अपना अपना अकद करके यानी गिरा बांध के उनको हलीफ बना के तुमने अब उनको अपना वारिस कहा है, तो अब तुम उनको हिस्सा दोगे। बाज ने कहा है कि इससे मुराद दौरे जाहिलियत के वो सारे मुआहिदे हैं जो कोई एक कबीला दूसरे कबीले को मवाली बना लेता था, यानी कहता था कि ये विरासत में हमारे रिश्तेदार हैं, हिस्सेदार हैं, सॉरी रिश्तेदार नहीं हिस्सेदार हैं, तो इसमें वो सारे मुआहिदे आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा मुआखात कराया था ना जब मदीना आए थे, तो वो भी उसमें भी ये था कि दो भाई बन गए, अब वो जो भाई भाई बने तो वो एक दूसरे की विरासत के भी मालिक होंगे अगर एक उनमें से मर जाएगा, लेकिन बाद में ये मंसूख कर दिया गया, सूरह अनफाल की आयत नंबर 75 आ गई जिसमें बता दिया गया कि अब बस जो रिश्तेदार हैं वो ही, जो खूनी रिश्ते हैं वो ही हकदार है विरासत के, अब ये कोई किसी को एडॉप्ट करके उसको वारिस नहीं अपना बना सकता कि किसने बच्चा एडॉप्ट किया तो वो कहता है कि अब ये मेरा वारिस बनेगा, नहीं वो एडॉप्शन से नहीं हो सकता, वो उसी खूनी रिश्ते सिर्फ वारिस बनेंगे। हाँ ये हो सकता है कि कोई अपनी वसीयत के अंदर ये कर जाए कि वसीयत में से दे दे अपने जो हलीफ है उसको, अब तो हलीफ कोई होता ही नहीं है लेकिन चलो अपने दोस्तों को दे सकता है या अपने मुंह बेले बच्चे को दे सकता है कुछ भी, तो वो स्टिल इट रिमेन्स, लेकिन वैसे जायदाद में से विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा इनको। इन अल्लाह क्याना अला कुल्ली शेइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे खुद गवाह है, वो देख रहा है, उसको पता है कौन कहाँ ज्यादतियां करता है, कौन कहता है नहीं जी मैं ये तो नहीं मानती, मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को फलां को इतना दूं और फलां नाफरमान है उसको ना दूं, कुल्लिन जालना मवालिया, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बना दिए वारिस, और कौन किसको महरूम करना चाहता है, आग करके उसको कुछ भी नहीं देना चाहता है, या किसी को ज्यादा देना चाहता है, या इन अहकामात को तोड़ना चाहता है, अपनी अकलों को ज्यादा समझता है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यहाँ तक रखते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا